कमीने, हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? कहा था मैंने तुझे कि आरवी की परछाई से भी दूर रहना, पर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जान से मार दूंगा मैं तुझे। सबकी लाख कोशिशों के बाद भाग वो शान को विहान से अलग नहीं कर पा रहे थे, तभी आरवी की रुंधी हुई आवाज शान के कानों में पड़ी। शान, ये पहली बार था जब आरवी ने शान को इस नाम से पुकारा था। कितनी मुश्किल से निकला था ये शब्द उसके लबों से, ये वही समझ रही थी। उसकी आवाज जैसे ही शान के कानों में पड़ी, वो विहान को मारते मारते रुक गया और सर घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। फिर उसने मुड़कर एक आखिरी मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और उसे खुद से दूर धकेलते हुए चीते की स्पीड से सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया। पर अभी वो कुछ आगे ही आया था कि उसके कानों में विहान की टूटी बिखरी हुई सी आवाज पड़ी। गलती कर रहा है मुझे जिंदा छोड़कर। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी आरवी को तेरा नहीं बनने दूंगा, उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। जुनून है वो मेरा और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। शान के आगे बढ़ते कदम रुक चुके थे और गुस्से में उसकी नसें तन गई थीं। उसने पलटकर गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा और वापस उसके पास जाने को कदम बढ़ाए, पर कमिश्नर साहब ने उसे बीच में ही रोक दिया। मल्होत्रा साहब, आप मैडम को जाकर देखिए, इसकी गर्मी हम अपने तरीके से निकाल देंगे। आप चिंता मत कीजिए, ऐसी खातिरदारी करेंगे इसकी कि ये क्या इसकी साथ पूछते भी आपके परिवार के आसपास आने से डरेंगी। शान के दिमाग में फिर से आरवी का ख्याल कौंध गया और साथ ही विहान की कही बातें याद आते ही कुछ अनहोनी होने की आशंका से उसका मन घबराने लगा। अभी उसके लिए आरवी के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने जलती निगाह विहान पर डाली, फिर कमिश्नर सर को देखकर बोला, अभी और इसी वक्त लेकर आइए इसे, और ध्यान रहे कि कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए इसके साथ। वो हाल कीजिए कि ये क्या इसकी साथ पुश्तें भी आपके परिवार के आसपास आने से डरेंगी। किसी कीमत पर ये छूटना नहीं चाहिए और न ही आज की बात बाहर आनी चाहिए। सबूत मैं आपको दे दूंगा, पर इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, आज की बात बाहर नहीं आएगी और न ही ये अब कानून के शिकंजे से बचकर निकल सकेगा। अभी आप मैडम को देखिए, मैं कल सुबह खुद आऊंगा आपके घर उनका स्टेटमेंट लेने, ताकि इसे इसके गुनाहों की सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। शान ने हामी भरी और तेजी से ऊपर जाने लगा। कमिश्नर विहान को लेकर जाने लगे, पर वो जाते जाते भी बोल पड़ा, दुनिया की कोई ताकत मुझे आरवी से दूर नहीं कर सकती। मैं वापस आऊंगा और अब की बार आरवी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और तू बस तड़पता रहेगा उसके लिए। विहान यूं ही बड़बड़ाता रहा, पर शान ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिलो दिमाग में तो अभी सिर्फ और सिर्फ आरवी छाई हुई थी। एक बार की बात दोबारा उसकी आवाज नहीं आई, क्योंकि विहान की आवाज सुनकर वो डर गई थी। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और चाहकर भी लबों से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अचानक ही उसके रूम का दरवाजा खुल गया, जिससे वो और ज्यादा सहम गई। वो इस कदर डर गई थी कि अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आहट से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, जैसे विहान से बचने के लिए चिल्ला रही थी। उसने अपनी आंखों को कसके भींची हुआ था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसकी चीखों में उसका दर्द और डर झलक रहा था और शान का भय बढ़ता जा रहा था। चाहकर भी लबों से शब्द नहीं निकल रहे थे और घबराया हुआ सा वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा था। जब वो आरवी के पास पहुंचा और उसने उसकी हालत देखी, तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो एक सेकंड से ज्यादा देर तक उसे देख ही नहीं सका और उसने उस पर से निगाहें फेर ली। उसके सूट को ऐसे फाड़ा गया था कि अब उसका ऊपरी बदन का ज्यादातर भाग निरावरण था, और जो हिस्सा नजर आ रहा था वहां मौजूद दांतों और खून के निशान उसके साथ की हैरानियत का सबूत दे रहे थे। शान की आंखें गुस्से, दर्द और बेबसी से लाल हो गईं, और ये गुस्सा उसे विहान पर नहीं खुद पर आ रहा था कि उसके रहते वो कमीना आरवी के साथ ही सब कर गया। उसने तुरंत ही अपना कोट उतारकर आरवी के ऊपर डाल दिया और बिना उसे देखे उसके हाथ पैर को खोलने लगा। बदन पर कुछ गिरते ही आरवी ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी थी और शान को वहां देखकर उसकी आंखें तेजी से बरसने लगी। उसने शर्मिंदगी से अपनी निगाहें झुका ली और सिसकने लगी। शान उसके हाथ पैर खोल चुका था, फिर भी आरवी बेजान सी वहां वैसे ही लेते हुए थी। शान ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को मजबूत किया और जमीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके पास आ गया और उसके पास बैठते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, उसे पुलिस पका कर ले गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकेगा, चलो उठो, हमें घर जाना है। शान ने ये चंद शब्द कितनी मुश्किल से कहे थे ये वही जानता था। आरवी उसकी बात सुनकर उठने की जगह पलटकर उसकी गोद में आकर छुप गई और फफक फफक कर रो पड़ी। शान की आंखें भी नम हो गईं। दोनों में से कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। आरवी उसकी गोद में अपना चेहरा छुपाए काफी देर तक रोती रही और शान उसके सर पर खामोशी से हाथ फेरता रहा। जब काफी देर बाद भी आरवी शांत नहीं हुई, तो शान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, बस बस बहुत रो लिया, कुछ नहीं हुआ है, अब मैं आ गया हूं ना तो कोई तुम पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, चलो अब चुप हो जाओ और ब्लेजर पहनो, हमें जल्दी से यहां से निकलना है। आरवी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया और न ही चुप हुई। शान ने उसके दुपट्टे से उसको कवर कर दिया, फिर उसके कंधों को थामते हुए उसे उठाकर बिठाया और अपने सीने से लगा लिया। आरवी ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपना सारा दर्द बाहर निकालने लगी। शान ने भी उसे नहीं रोका। कुछ देर बाद जब आरवी कुछ शांत हुई, तो उसने उसे खुद से दूर किया और जैसे ही उठने लगा, आरवी ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोक लिया। शान ने पलटकर उसे देखा तो आरवी की निगाहें झुकी थीं, चेहरे पर बेचैनी, डर और घबराहट के भाव मौजूद थे। आंखों से आंसू बह रहे थे और लब थरथरा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। लेकिन शान उसकी खामोशी की भाषा भी समझ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, बस दूसरी तरफ घूम रहा हूँ ताकि तुम कंफर्टेबली ब्लेजर पहन सको। इतना कहकर उसने अपने हाथ पर से उसके हाथ को हटाया और दूसरी तरफ घूम गया। अब उसकी पीठ हार्वी के साइड थी। हार्वी ने हौले से भीगी पलके उठाकर उसे देखा, फिर अपने ऊपर से दुपट्टा हटाने के बाद शान का ब्लेजर पहन लिया, उसके बटन लगा लिए। कुछ देर बाद शान ने यूं ही खड़े हुए ही पूछा, पहन लिया तुमने? हार्वी ने बस इतना ही कहा। शान उसकी तरफ घूम गया। हार्वी को देखा तो ब्लेजर पहनने से उसका बाकी शरीर तो ढक गया था, पर गले से लेकर सीने तक का हिस्सा नजर आ रहा था। अंदर पहना कैमिसोल भी दिख रहा था। शान ने उसका दुपट्टा उठाकर और उससे उसको कवर करने के बाद झोंककर हार्वी को अपनी बाहों में उठाकर रूम से बाहर निकल गया। हार्वी उसकी बाहों में निगाहें झुकाए खामोश बैठी रही और सिसकती रही। शान ने उसे अपनी कार में बैठाया और ड्राइविंग सीट संभालते हुए तेजी से गाड़ी वहां से बाहर निकाल दी। हार्वी खिड़की से तकतकाए आंखें बंद किए बैठी रही, बंद आंखों से आंसू बहते रहे, सिसकती रही और अपनी बाहों को खुद पर लपेटे सिमटी हुई सी बैठी रही। शान समझ रहा था उसकी स्थिति, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। ड्राइव करते करते बीच बीच में उसे देख लेता। उसके आंसू उसका सीना छलनी करते जा रहे थे, फिर भी वो खामोश बैठा रहा। बारिश अब भी हो रही थी, सड़कों पर काफी हद तक अब भी पानी भरा हुआ था, पर शान बस घर की तरफ गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। इन सब में शाम से रात हो गई थी।
घड़ी 8 बजा रही थी। बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हार्वी के मन में भी अंधेरा छाया हुआ था। वो लगभग 8:30 बजे घर पहुंचे। सुयश जी आज आए नहीं थे और सुभाष जी अपने रूम में थे। हॉल में छाया अर्पिता जी अंशु के साथ बैठी थी और इंतजार कर रही थी शान और हार्वी का, क्योंकि अंशु जिद पर अड़ी थी कि हार्वी के साथ ही खाना खाएगी। उन्होंने हार्वी को फोन किया था जो शान ने उठाकर घर आने की बात बता दी थी, इसलिए वो उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें शान आता नजर आया और साथ ही नजर पड़ी उसकी बाहों में मौजूद हार्वी की, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। छाया और अर्पिता जी दोनों उठकर खड़े हो गए और परेशान से उनके तरफ बढ़े, पर शान सबको नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से सीधे सीढ़ियों के तरफ बढ़ गया। अंशु उसको पुकारती रही, पर वो नहीं रुका और सीधे अपने रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। छाया और अर्पिता जी ने परेशान निगाहों से एक दूसरे को देखा, फिर अर्पिता जी ने छाया को अंशु को बहलाने को कहा और खुद सीढ़ियों के तरफ ये पता लगाने बढ़ गई कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे तरफ शान ने गेट लॉक करने के बाद हार्वी को बेड पर बिठा लिया और खुद उसके पास बैठ गया। बहुत से सवाल घूम रहे थे, बहुत कुछ पूछना चाहता था उससे, पर फिर उसकी अवस्था देखकर उसने अभी चुप रहना ही ठीक समझा और उठकर गेट के तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अर्पिता जी खड़ी थीं। शायद वो गेट नोक करने ही वाली थीं, पर उससे पहले ही शान ने दरवाज़ा खोल दिया। शान को देखते हुए अर्पिता जी ने चिंता भरे स्वर में उससे सवाल किया, शान बेटा, हार्वी को क्या हुआ है? उनकी हालत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनका सवाल सुनकर शान ने सर घुमाकर पीछे खामोश गुमसुम बैठी हार्वी को एक नज़र देखा, फिर अर्पिता जी को देखकर बोला, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। जैसे ही उसने ये कहा, अर्पिता जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने घबराकर में तेज स्वर में कहा, बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? कैसे हुआ ये? किसने इतनी जुर्रत की कि मल्होत्रा खानदान की बहू पर बुरी नज़र डाली, और आपके रहते ये कैसे हो गया? अर्पिता जी ने आखिरी सवाल हल्के गुस्से में पूछा, जिसे सुनकर शान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। टू बी कंटिन्यूड।